विश्वानि देव सवितर दुरितानि रासुव यद भद्रं तन्मयासुव ओम सर्व रक्षक भगवान दुरितानि हमारे जो दुर्गुण हैं पाप कर्म हैं उनको निवारण करे उनको विनाश करे यद भद्रम तन्मयासुव और जो कल्याणकारी भावनाएं और कर्म हैं श्रेष्ठ उनको भी प्रदान करें। चार दिन से प्रसंग चल रहा है मोक्ष के विषय का। मोक्ष के विषय में संन्यास से पहले तो बड़ी साधनाएं करी मोक्ष प्राप्त करना है, पर जब से संन्यास लिया है क्योंकि कामना चाहे मोक्ष की हो चाहे संसार की हो चाहे किसी भी प्रकार की हो कामना सभी बंधन का हेतु हुआ करती है, तो मुक्ति की इच्छा भी बंधन का हेतु होनी चाहिए। और फिर बहुत अनुसंधान किया, बहुत खोज करी, जब से सृष्टि चली है अब तक जितने महापुरुष मोक्ष में गए हैं कोई लौट के नहीं आया, हमने भी नहीं आना तो ऐसे मोक्ष में जाके करना क्या है जहां आप लोग नहीं होंगे, ये हरा भरा पहलगाम नहीं होगा, उस सूखे मोक्ष में क्या करेंगे रह करके। तो इसलिए वो भी कामना जाती रही है। बाकी जब तक ये शरीर रहना है कुछ न कुछ तो कर्म करना ही होगा, जैसे भूख स्वाभाविक लगती है हाथ से उठा के खाना ही पड़ेगा, टट्टी का बेग आता है कहीं इधर उधर जाना ही पड़ेगा, हाँ पागल या उन्मत्त हो जाए फिर तो इन बात का भी ज्ञान ध्यान नहीं रहता है। तो अगर पागलों जैसा मोक्ष है तो उसको भी क्या करेंगे प्राप्त कर करके। तो यदि कोई मोक्ष नाम की चीज है तो वो इसी जीवन में प्राप्त होनी चाहिए, इसी शरीर के रहते हुए प्राप्त होनी चाहिए। और वो अगर कोई थोड़ी बात बहुत कुछ है, जब कभी तुम्हें कोई शांति की अवस्था आ जाती है, मन सब प्रकार से शांत और समाहित हो जाता है, पूर्ण शांति और आनंद का ही अनुभव करते होते हो और कुछ ना हो, बस ये मोक्ष की अवस्था होगी। तो ये मरने के बाद किसको होगी उसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि या तो मर के देख लेने और फिर जल्दी जी जाएं पता लग जाए कैसे कैसा था मरने के बाद। मरने को भी किसी का दिल नहीं चाहता, रोगी हो दुखी हो सुखी हो मरना भी कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मरण जो है अंतिम दुख कहलाता अभिनिवेश नाम का कलेश। मान भुवम किंतु भूयासम, मैं मरू ना जीवित रहूं ऐसी कामना सदा बनी रहती है। हमेशा रोज हम सब इस प्रकार के उपाय करते हैं, भूख लगती है ना खाएं तो मरना हो जाएगा, इसलिए जीवित रहने के लिए खाना पसंद करते हैं। ज्ञानी भी खाते हैं, ध्यानी भी खाते हैं, मूर्ख भी खाते हैं। तो इसलिए ऐसे सिद्ध होता है कि जीवन में जो समाधि की अवस्था में पूर्ण शांति और आनंद की उपलब्धि होती है उसको उसकी तुलना उसकी उपमा आप मोक्ष के साथ कर लो। पर उसके बारे में हम कह नहीं सकते, वर्तमान तो ये ऐसा है, वहां जाके क्या होगी ये शरीर तो होगा नहीं, क्योंकि इस स्थूल शरीर से ही समाधि लगती है, इसकी इंद्रियों का निग्रह होता है निरोध होता है तभी शांति की अनुभूति होती है। इस शरीर को छोड़ करके पता नहीं इस प्रकार की साधना भी ना होती हो, ऊपर आकाश मंडल में घूमते फिरते वहां तो कोई ऐसी गद्दी भी नहीं मिले, ऐसा सिंहासन भी नहीं मिले, आप लोग भी नहीं होंगे तो वहां ऐसी समाधि लगा कर भी क्या करेंगे। तो इसलिए ये जो वर्तमान का जीवन है इसी को आप सुख में शांति में आनंद में बनाने की कोशिश करो। कोई भी वेदना प्रतीत ना हो, किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति ना हो, ऐसे जिन कर्मों से पूर्ण सुख की उपलब्धि होती है वो कर्म करते चले जाओ। कर्म तो करना है, मूर्ख ने भी करना, ज्ञानी ने भी करना है, सब ने करना, कर्म का अभाव नहीं होगा। तो इसलिए जिन श्रेष्ठ कर्मों से शांति का मार्ग मिलता है, शांति मिलती, आनंद मिलता है, उस प्रकार के विधि आत्मक कर्म करते चले जाओ जब तक जीवन है। मरने के बाद जो होगा उसकी क्या चिंता करते हो, वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान तो काले ने वर्तगंती भी चक्षणा, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो वर्तमान की चिंता किया करते हैं, भूतकाल का भी चिंतन नहीं करते, भविष्य का भी चिंतन नहीं करते, वर्तमान को देखा करते हैं। तो आप सब लोग बुद्धिमान बन करके वर्तमान को देखो, वर्तमान अच्छा बनाओ। प्राप्त होने वाली है उसका कभी न कभी अंत तो होगा ही, नित्य तो बन सकेगी नहीं। अगर साल्वेशन प्राप्त हो करके नित्य वो बना रहे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साल्वेशन उत्पन्न किया गया है, प्राप्त किया गया है, हासिल किया गया है, तो स्थायी नहीं रहेगा उत्पन्न होने वाली चीज। जैसे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, 150 साल में मरण हो जाना, इसका स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए मुक्ति भी स्थायी रहने वाली चीज है। और एक और बात यह है कि जब परलय आ जाती है, पापी, पुण्यात्मा, बद्ध और मुक्त सब एक समान ही हो जाते हैं वहां। परलय काल की अवस्था में सब प्राणी, सब जीव एक ही समान हो जाते हैं, कोई वहां अंतर नहीं रहता। अंतर तो इस लोक में है, भोगों का अंतर है, ज्ञान का, वैराग आदि का और धन का, ऐश्वर्यों का अंतर तो इस लोक में है। तो परलय काल की अवस्था में इस प्रकार का कोई अंतर और भेद भी नहीं रहता। तो वहां बद्ध और मुक्त, पापी और पुण्यात्मा सभी एक समान हो जाते हैं। तो जब एक समान हो जाते हैं तो मरने के बाद ऐसे साल्वेशन के प्राप्ति के लिए यतन करने की भी क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ही मिल जाना स्वाभाविक ही। प्रकार की मुक्ति चार प्रकार के स्थानों में बतलाई थी। एक तो मुक्ति मोक्ष है, इस शरीर की अवस्था में जब समाधि की अवस्था में पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति होती है, एक तो वो अवस्था मोक्ष के समान होती है। वहां सुख दुख की बात नहीं है, केवल आनंद की अनुभूति है, और उस अवस्था में चेतन के साथ ठीक संबंध हुआ हुआ होता है, हमारा परमात्मा के साथ ठीक संपर्क जुड़ा हुआ होता है, बीच में कोई व्यवधान नहीं रहता, जब शांति और आनंद बने रहती है। तो ये तो इस स्थूल शरीर में मोक्ष की प्राप्ति की बात है। अब रहा इस शरीर को छोड़कर जब सूक्ष्म चला जाएगा, अब सूक्ष्म के विषय में हमारे केवल अनुमान है कि वहां क्या स्थिति होती होगी या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष की बात वहां कोई देखने की नहीं आती है। आती भी है कभी कभी, ध्यान में बैठे होते हैं तो ऐसे जैसे हमारे शरीर हैं आकाश मंडल में हल्के फुल्के शरीर से चलते घूमते नजर तो आते हैं। ध्यान की अवस्था में बहुत से अभ्यासियों को भी आया करते हैं, कोई महात्मा आ गया, लॉर्ड क्राइस्ट आ गया, कृष्णा आ गया, मोहम्मद आ गया, कोई और पैगंबर आ गया, बुद्ध आ गया, चाहे तो वो स्मृति जन्य ज्ञान समझ लो या उनके सूक्ष्म शरीर हमारे सामने आ जाते हैं। तो एक ऐसी भी अवस्था समाधि जैसी अवस्था में आया करती है, तो उनका अनुमान कर लेना चाहिए कि एक इसी तरह आकाश मंडल में विचरते हुए रहना है। यहाँ तो भूमि पर हम खड़े होकर रहते, चलना फिरना है, क्योंकि ये भूमि भी स्थूल भारी है और हमारे शरीर भी भारी है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आकाश में ठहरने वाले होते हैं। आकाश ही एक प्रकार से इनके गमनागमन का स्थान होता है। जैसे सूक्ष्म छोटे से गुब्बारे उड़ा देते ना बच्चे, वो हल्के होते आकाश में उड़ते ही रहते हो जब तक फटे पटाएंगे नहीं, तो इसी प्रकार वो सूक्ष्म शरीर भी आकाश में गमन करते हुए सूक्ष्म भूतों का, सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं का, सूक्ष्म गंध, सूक्ष्म रस आदि का भोग कर करके जीवित रहते हैं। तो वहां भी जीवन की स्थिति माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार ऐसे शरीर योगियों को तो देखने में आ जाते हैं ध्यान समाधि की स्थिति में, सर्वसाधारण की के देखने में नहीं आते, वरना उनको तो अनुमान ही करना होता है। तो दूसरा लोक यह है, अगर आज इस शरीर से मेरा पीछा छूट जाए और इसमें ही मुझे राग द्वेष आदि इच्छाएं सब खत्म हो जाए और इसी में मेरा मोक्ष हो जाए, तो जब तक परलय काल नहीं आएगी मुझे सूक्ष्म जगत में रहना पड़ेगा, और सूक्ष्म जगत में भी पंच तन मात्राओं के भोग भोगने पड़ेंगे। वहाँ केवल संकल्प मात्र से गंध और रस की उपलब्धि हो जाती है सूक्ष्म जगत में, वो सूक्ष्म जगत को दूर लोक विशेष नहीं, यहाँ भी है, इस पहलगाम में भी है। एटम शक्तियाँ परमात्मा तो सब जगह वर्तमान है ना, परमात्मा की व्याप्ति सब जगह जब वर्तमान है तो सूक्ष्म तन मात्राओं की सूक्ष्म रसों की भी तो व्याप्ति सर्वत्र रहती है, तो इसलिए इस आकाश मंडल में विचरते हुए रहना होता है, इस स्थूल पृथ्वी से उनका कोई संबंध नहीं रहता। तो उसकी अवधि क्योंकि 4 अरब वर्ष या इसके विनाश में लगते हैं, पहले तो हम 2 कहा करते थे पर अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि 2 नहीं 4 अरब वर्ष लगेंगे विनाश होने में, अगर आज से जगत विनाश होना शुरू हो दे, क्योंकि अभी तक 2.25 अरब वर्ष हुए सृष्टि की उत्पत्ति को। अब आजकल के साइंस दानों ने तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा को 4 अरब वर्ष सिद्ध कर दिए हैं कि 4 अरब वर्ष हो गए। पुराने हमारे जो थे ये विज्ञानवादी ज्योतिष वाले, इन्होंने तो 2.25 अरब ही बतलाये, 2.25 अरब सृष्टि के और रहते हैं, परंतु चंद्रलोक पर जो ये लोग गए अन्वेषण किया वहाँ के पाषाणों का पत्थरों का, ये सिद्ध किया है कि इसको चंद्रमा को 4 अरब वर्ष उत्पन्न हुए होते हैं। तो उस हिसाब से तो चंद्रमा को और उससे और लोग तो और पहले पैदा हुए होंगे, तो ये सृष्टि का अंदाजा लगा लेना हम अपनी अकल से कि इतने वर्ष इसके उत्पत्ति के विनाश के हैं, केवल हमारे अनुमान है, ठीक अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इतने अरबों वर्ष से चली आ रही है उसका हम कैसे इतना माप तोल कर लेंगे, इतनी हमारी बुद्धि का आदि विकास नहीं हुआ, पहले छोटी बुद्धि का विकास हुआ था वह 12 अरब की सृष्टि मानी गई थी, अब और बुद्धि का विकास हो गया 24 अरब वर्ष की सृष्टि मान ली, और बुद्धि का विकास होगा तो और ज्यादा 48 वर्ष भी हो जाए, क्या बताया 48 अरब वर्ष। तो इस तरह बुद्धि का विकास होता जाएगा तो हम साइंस के द्वारा सिद्ध करते जाएंगे भाई ये पाषाण कब पैदा हुए होंगे, हमारा लोक कब पैदा हुआ होगा। तो इस प्रकार वो या अब अगर ये शरीर छूट जाता है तो मुझे सूक्ष्म जगत में कम से कम 4 अरब वर्ष में सारी परलय होगी, तो 2 अरब वर्ष तो सूक्ष्म जगत में रहना पड़ेगा, और 2 अरब वर्ष जहां कारण शरीर रहना है, महतत्व के लोक में रहना है, क्योंकि वो 3रे दर्जे की साल्वेशन या मुक्ति है, एक मोक्ष तो यहाँ है, एक दूसरा मोक्ष सूक्ष्म इस जगत में है, और 3रा मोक्ष जो है चित्त जहाँ उत्पन्न हुआ, चित्त जहाँ रहते हैं उस लोक में या उस देश में या उस स्थान में, 4थे दर्जे का जो मोक्ष है वो प्रकृति में जाकर होगा। तो 4 प्रकार के मोक्ष इन 4 अरब वर्षों में होंगे, फिर वो एक प्रकार से हमें 4 अरब वर्ष 8 अरब वर्ष तक परलय बनी रहेगी, वहां रहना पड़ेगा। तो मुझे इस प्रकार से 4, 8, 12 अरब वर्ष तक मेरा मोक्ष हो सकेगा, फिर कान पकड़ कर लाया जाऊंगा, चलो उसी सृष्टि में जहां से आए थे।